તારીખ 29/9/1990 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 35.
કે ઇસ જીવ કા કોઈ સબસે બડા દોષ હૈ તો યહ હૈ કે જિસ દોષ કે વશાત ઇસ જીવ કો તીવ્ર મુમુક્ષુતા તો કભી ઉત્પન્ન હી નહીં હૈ નહીં હુઈ હૈ કિંતુ મુમુક્ષુતા હી સચ્ચી મુમુક્ષુતા હી ઉત્પન્ન નહીં હુઈ હૈ મુમુક્ષુતા મને સચ્ચી મુમુક્ષુતા હી ઉત્પન્ન નહીં હૈ પ્રાય મનુષ્ય આત્મા કિસી ને કિસી ધર્મ મત મેં હોતી હૈ ઓર જગે સંપ્રદાય નહીં દેવલોક મેં ભી સંપ્રદાય નહીં नारकी में भी संप्रदाय नहीं तीन छ में भी संप्रदाय नहीं है मनुष्य गति में संप्रदाय होता है तो प्राय यहाँ की वो भी इधर महाविद्या में नहीं है ये कर्म भूमि में संप्रदाय होता है तो प्राय मनुष्य आत्मा किसी न किसी धर्म मत ये सब मर्यादित बात लेना मनुष्य आत्मा लिया फिर भी ये मर्यादित बात लेना कि विदेह में नहीं है युगलिया में नहीं है ऐसा मनुष्य आत्मा किसी न किसी धर्म मत में होती है हम तो वर्तमान परिस्थिति पर तो उतना विचार प्रकट करते हैं इसलिए वर्तमान मनुष्य को गिनते हैं किसी न किसी धर्म मत में उसका पूर्व कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है तो कोई क्रिश्चियन होता है कोई मुसलमान होता है कोई जैन होता है कोई हिंदू होता है कोई पारसी होता है कहीं न कहीं इसका धर्म मत होता ही है और उससे वह धर्म मत के अनुसार प्रवर्तन करती है और जिस धर्म मत में होती है उसी अनुसार उसका प्रवृत्ति भी उसी धर्म के अनुकूल ही यहाँ करती है पर ऐसा मानती है कि मैं ऐसा मेरा धर्म ये मेरा धर्म है इस कुल का हूँ इस धर्म का हूँ मेरा धर्म यहाँ हुआ है मुझे ये धर्म पालन करना चाहिए परंतु इसका नाम कोई मुमुक्षुता नहीं है अपने अपने धर्म में चुस्त रीति से धर्म का अनुसरण पालन करे इसलिए कोई इसको मुमुक्षुता आ गई हो या हो गई हो तो बात नहीं इसको मुमुक्षुता हम यहां नहीं कहते हैं अब तो गुरु कृपा देव को मुमुक्षुता को स्पष्ट करनी है मुमुक्षुता को डिफाइन भी करेंगे इसकी परिभाषा भी करेंगे और मुमुक्षुता का विस्तार भी करेंगे प्राप्ति कैसी होगी उसमें अवरोध है ऑब्स्टेकल्स हैं वो कौन से हैं क्या किस प्रकार से नुकसान होता है किस प्रकार से वो हासिल होती है और प्रारंभ से लेकर किस हद तक मुमुक्षुता को मुमुक्षुता में जाना चाहिए ये सब बात इस पत्र के इस प्रकरण में नहीं है प्रकरण यही चला है बहुत सुंदर पत्र है काफी जो कृपा देव के अनुयायी वर्ग है उसमें इस पत्र का वंचन और प्रवचन भी लोग करते हैं वंचन का लोग करते हैं देखा डॉक्टर सोने जी का तो छपा हुआ प्रवचन है तीन चार चार पत्र छपा हुआ इसमें ये पत्र का प्रवचन छपा हुआ वो भी देखा मुंबई में मिले पार्लियामेंट में एक मंडल है कृपा देव मंचन करने को गए थे तो महेंद्र भाई ने उन्हें आमंत्रित किया था उसने किताब दिया देखो ये स्वामी जी साहब का प्रवचन है इसमें ये आप 254 पत्र लिया तो उन्होंने भी ये पत्र आगे लिया था उसका प्रवचन हमने छपाया संस्था ने छपाया को बात संस्था से छपा पत्र तो प्रसिद्ध है समाज है उसमें ये पत्र प्रसिद्ध है तो काफी सामग्री है इसमें फर्स्ट टाइम वो पहले पढ़ा पार्ला में तो 8 घंटा पढ़ा था 8 कलाक चला था 5 दिन में 4 दिन तो वही चला था सुबह शाम एक ही पत्र चलाते थे बहुत सामग्री और बिल्कुल व्यवस्थित सिस्टमेटिकली बात है। तो बात दो दो तीन ली है मुमुक्षुता में, तो मुमुक्षुता के आनुषंगिक परिणाम तो बहुत से हैं, लेकिन दो तीन जो मुख्य बात ली है इसलिए कि दूसरे तो आनुषंगिक परिणाम होते हैं, ये दो तीन से जो मुमुक्षुता आ जाती है और होती है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुमुक्षुता यह है कि सब प्रकार की मोहाशक्ति से अपना कर एक मोक्ष के विषय में ही प्रयत्न करना है। देखिए तो किसी शास्त्र में से निकाल दो, सर्व प्रकार की महाशक्ति से अकुल आकर, तो क्या है ये लाइन संसारी जीवों से कैसे अलग पड़ती है कि संसारी जीव को महाशक्ति के परिणाम होते हैं और जब जब जिस जिस प्रकार की महाशक्ति के परिणाम होते हैं वहां उनको रस आता है। क्या होता है?
रस,
उसको रस आता है, उसको ये सब बातें मीठी लगती है। जहाँ रस आता है वो अच्छापन लगता है, रुचती है, रचती है। वो जो मुमुक्षुता में ये बात बिल्कुल वृद्ध है, उनसे न होती है अकुलाकर, इसलिए महाशक्ति से अकुलाकर अकुलाकर मैंने गुंजाई है। तो अकुला सब में तो अकुलता लेते हैं मुख्य तौर से,
अकुलाई
होता है, मुंझड़ाता है, अकड़ा ठीक है, मुंझवान मुंझवान अकड़ावन ठीक बात है,
वो अकुलता है या अकुल,
हाँ ठीक समझ समझ सब तो फिट वर्ड है,
फिट वर्ड है
भाषांतर में। तो हमने दृष्टांत दे दिया था कि जैसे किसी एक मनुष्य का नाक बंद कर दो, नाक और मुंह दोनों बंद कर दो, क्या हालत होगी? एक मिनट में इसकी हालत क्या होगी कि उसका श्वासों श्वास में रुक गया, हवाई नहीं मिल रही है, मुंह से और नाक से हवा नहीं मिल रही है, तो हर हालत में छूटना चाहेगा इस परिस्थिति से, क्या होगा?
छूट जाए।
वो मन जो लेना है वो इस ढंग से लेना है कि जहां से छूटना चाहे चाहे और चाहे बिना छूटे उसको चैन नहीं पड़े, वो रह नहीं सके, सहन नहीं कर सके, नहीं सह सके। नाक और मुंह दोनों बंद हो गया तो सहन शक्ति नहीं होगी, जैसे तैसे भी छुड़ाएगा अपने आप को। ऐसे महाशक्ति में अगर नहीं, अनेक प्रकार के महाशक्ति होते महाविष्को मुंझन होती है, और इसके छूटने के विषय में जिसको प्रयत्न होता है पुरुषार्थ होता है तीव्रता आती है, इसको मुमुक्षुता कहते हैं। उनका निकालिए परिभाषा कर लिखे और एक विशिष्टता है गोपाल देव की वाणी में, बहुत प्रैक्टिकल साइड से सीधी सादी भाषा में वो बात करते हैं। प्रैक्टिकल साइड है कि एक आदमी इस प्रकार की मुंझाई गयो, कहते हैं कि मुंझाई गयो छुटा हुआ रियल नहीं, छुटवाना प्रयत्न किया बिना रही सका है जी नहीं है ना जी,
मतलब ये जोश थी बहुत पता नहीं जितने बोलो
पूरी ताकत से वो छुटने का प्रयत्न
करें। तो ये प्रतिपक्ष जो है तो जी ने सप्ला पर विषय में क्या ही पर रस आओ तो मिठास आती है अधिकता आती हो
तो वो मुक्षता नहीं है, उसको मुंझवन होनी चाहिए और ऐसी मुंझवन होनी चाहिए मुझे छूटना है, जैसे कैसे भी मुझे छूटना है, उसको मुमुक्षुता कहते हैं। इतना प्रैक्टिकल है। उनको माल खरीदना है, सोना खरीदना है, जेवरात खरीदना है, लेकिन पैसा नहीं देना है। हमारी तो प्रमाणिकता ही नहीं रही। उनको ये कहना चाहिए कि भाई पूरी रकम ले लो, हम आपको कम नहीं देंगे। सज्जन खरीद कैसे करते हैं कि आप कम मत लेना हमारे से, आपकी जो लागत है और आपका जो मुनाफा है उससे कम मत लेना। ज्यादा लो नहीं लो तुम जानो तुम्हारे जिम्मेदारी, लेकिन कम तो मत लेना। तुम्हारे पूरा जो लागत लागत है उसको भी ले लो, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है प्रॉफिट का है मुझे पूरा पैसा लेना है मुझे, हमारे पास तो पैसे की कमी नहीं, हम तो पूरा लेना चाहेंगे। इसके नाम प्रमाणिकता है। हमें तो देना नहीं है और लेना है, ये बात कहां की।
पैसा थोड़ा वधारे दियो, हां माल सारो
कहते हैं, लेने वाले को ऐसे ही कहते हैं कि देखो भैया दो पैसा ज्यादा ले लेना, लेकिन क्वालिटी अच्छी से अच्छी देना। उनको बिलो स्टैंडर्ड तो चाहिए ही नहीं, क्वालिटी चाहिए हमें, हम तो क्वालिटी के ग्राहक
नहीं।
हम पूरी ताकत से देखिए, इसका मुनाफा, इस मुमुक्षु का मुनाफा ही सिंपल है, एक मरण से बचना नहीं है, अनंत मरण से बचना है। तो हम क्यों पूरी ताकत नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगाएंगे? ये दिगंबरी दीक्षा है ना, इसका एक संकेत है। ये तो निश्चित रूप से होते हैं, उनका तो परिणाम ही नहीं जमता है, नहीं रहता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा संकेत है नीचे वाक के लिए कि देखिए सारा संसार गौण हुआ, कौन सी बड़ी चीज होगी? सारा संसार से भी कौन सी बड़ी चीज होगी कि जिसके आगे हमने सारा संसार को छोड़ा है? इससे कोई बड़ी चीज तो होगी नहीं, तब तो छोड़ी होगी। जो जिसने छोड़ी हो तो बुद्धिमान आदमी है, ऐसा तीर्थंकरों ने छोड़ी, शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरनाथ चक्रवर्ती थे, कामदेव पुरुष थे, कोई कमी नहीं थी, पांचों इंद्रियों का विषय की कोई कमी जिसके घर पे नहीं थी। तो इससे भी कौन सी बड़ी चीज देखी कि सारी दुनिया में सर्वसंग परित्याग करके वो निकल गए? एक संकेत है इसमें कि जिसके पीछे हमें पूरी ताकत लगानी है वो सबसे बड़ी चीज है, वाकई बड़ी चीज है। चीज तो सर्वोत्कृष्ट चाहिए, और इसके लिए हम रोने लगे कि इतने हार्ड कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत हार्ड कंडीशन है, हैं? हम तो ये कहेंगे कि कोई भी शर्त लाओ, रखो हमारे सामने कोई भी शर्त, हम उठा देंगे इस शर्त को। बिना जरूरता है कि नहीं जरूरता है, चैलेंज मारता है कि नहीं मारता, ऐसे चैलेंज मारना चाहिए। कोई भी शर्त लाओ हमारे सामने, हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन हमें चाहिए तो यही चाहिए। फिर तो आसान है, इस परिस्थिति में सब आसान है, इस परिस्थिति में ये तो विटपना ही विटपना है। सब
विचार ना करे हो इतने रस लेवाई जाए, आप विचार ना करे हो अपना रस लेवा, रस की कीमत समझाने की रस नो
आप आदत पड़ गई है। ये जो ग्रंथ है छोड़ा
भाषा
नहीं, ये वासिष्ठ उसमें वासना का स्वरूप लिया है। क्या बिना विचार रस आ जाता है? आपने बात की वही बात की, बिना विचार जीव को रस आ जाता है। पूर्व संस्कारित जीव दशा हो गया है पंचेंद्रिय के विषय में, तो वो विचार नहीं करता है उसके पहले, तो उसका रस चालू हो जाता है, क्योंकि संस्कार बहुत है।
इसको कोई टालने में कोई
नहीं है, बहुत टालने का मजबूत उपाय है, इससे भी बढ़िया उपाय है। ये तो कमजोर चीज है, हमारे पुरुषार्थ के आगे, चैतन्य वीर्य के आगे ये सब वासना फासना सब बिल्कुल कमजोर है, कुछ नहीं है इसके आगे, ये कुछ नहीं है, ये तो मक्खियों के उड़ाने जैसी सी बात है। सिंह को मक्खी उड़ाना कौन सी बड़ी बात है, सोता है मात्र तो सैकड़ों मक्खी बैठ जाएगी, क्योंकि सो भी आ रहे हजारों बैठेगी, थोड़ा भी करवट बदलेगा ना वहां तो भागने लगेगी सब मूर्खता में ये भागने लगता है सब, मनोदय आता है पहले, वेद ज्ञान के प्रोसेस में ही मनोदय आ जाता है, लिया है उधर तो लिया है, ये सुधारस का जो पत्र है ना उसमें मनोदय की बात लिया है, उपाधि में चल गई
जरूर
चलिए वहां आ जाता है, कंट्रोल में रहता है, बराबर मन बस रहता है, बिना कंट्रोल के बाहर नहीं जा सकता, इसके ऊपर धनी बैठ जाता है, मन धनी नहीं रहता, फिर मन का धनी बैठ जाता है मन के ऊपर नहीं जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इस लाइन में, कोई बड़ी बात नहीं, वो हाव है उस लाइन में गए नहीं उनके लिए, तो बड़ा लगता है कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो बिना विचार ही चला जाता है परिणाम, इसलिए तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सके, ऐसी बात नहीं है, मैं अपना सामर्थ्य का कभी विचार नहीं किया, अनंत सामर्थ्य किसको कहे, किसको अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत दिन अनंत सुख किसको कहे, अनंतता किसको कहे, आता है अन्य मत में ऐसा आता है, अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में सबसे पहले गांडीव का टंकार किया है, बाण नहीं छोड़ा, ये बात क्यों आई बीच में, टंकार में बोरी को पांच को खींचते हैं तो आवाज आती है इसमें से, महाभारत के युद्ध में जो वर्णन आता है महाभारत के जो शास्त्र है कथा है उसमें, तो उसमें एक बात बीच में ये आती है कि युद्ध में युद्ध शुरू करने के पहले उसने गांडीव को उठाया, धनुष का नाम गांडीव था, विद्या साधते थे, विद्या से साधित होती है सब, बाण धनुष सब विद्या से साधित होते, धोरी खींची पणछ खींची उसमें से आवाज निकले ना, वो आवाज निकलने ही रारक्षण में सैन्य में से बहुभाग, रारक्षण मैंने संख्या बहुत बड़ी है, इसमें से बहुभाग जो है वो पिन दिखाकर भागने लगे, अरे इसके धनुष में से ये आवाज आती है, मर गए हम तो, मर गए मर गए, भागो भागो मर गए मर जाएंगे हम तो, भागने लगे सैन्य में से, ये तो एक विद्या का विषय है, ये लौकिक विद्या है, पारलौकिक विद्या नहीं है, ये तो पारलौकिक विद्या है, इसमें भी अहंकार होता है, ये मुमुक्षुता में होता है तो भागने लगते हैं सब, तो भागने लगते हैं, नहीं भागने लगते इस बात नहीं, भागने लगते हैं, तो ये बात है इसमें,
मुमुक्षुता का ये प्रसंग तो बताया, इसमें तो अवलोकन भी इतना बढ़ गया है कि वो अनुभूति प्राप्त कर रहे
हैं, मुमुक्षुता वाला तो अनुभूति करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे ये बात कहाँ की है, पहले तो प्रारंभ की बात है
जी,
तो पूर्णता से लक्ष्य से प्रारंभ किया कि नहीं, फिर अवलोकन का तो स्टेज है, इसके पहले अवलोकन में आ ही नहीं सकेगा, विचार करेगा और मानेगा कि अवलोकन होता है, चलता होगा विचार, तो मुमुक्षुता यह है कि सर्व प्रकार की महाशक्ति से खुलाकर एक मोक्ष के बारे में, एक मोक्ष के विषय में ही यत्न करना, ये मुमुक्षुता है। और तीव्र मुमुक्षुता यह है कि अनन्य प्रेम से मोक्ष के मार्ग में प्रतिक्षण प्रवृत्ति करना है, प्रतिक्षण आगे बढ़ते जाना, मोक्ष मार्ग में प्रतिक्षण समय समय में आगे बढ़ते रहे, इसको तीव्र मुमुक्षुता कहते हैं। इसको ज्ञान दशा भी कहते हैं, साधक दशा भी कहते हैं। इसके पहले मुमुक्षुता होती है और इसके फल में तीव्र मुमुक्षुता मैंने ज्ञान दशा आती है। तो यहां पर मैंने इस पत्र में तीव्र मुमुक्षुता के विषय में बताना नहीं है,
इस हम सही बात
ये इस पत्र का ज्ञान दशा का साधक दशा की चर्चा हम नहीं करेंगे, ये प्रकरण यहाँ में नहीं लेना है। क्योंकि तो मुमुक्षुओं को पत्र लिखा था, इसमें कोई तीव्र मुमुक्षुता तो था ही नहीं, मुमुक्षुता में लाने की बात थी। परंतु मुमुक्षुता के विषय में बताना है, परंतु मुमुक्षुता के विषय में बताना है कि मुमुक्षुता कैसे होनी चाहिए, कैसे उपलब्ध होती है, क्या इसका लक्षण है, क्या इसका स्वरूप है। उसके उत्पन्न होने का लक्षण है अपने दोष देखने में अपक्षपातता। पहली बात ये लिया है कि अपना दोष अपक्षपात रूप से देखें, विचार की भूमिका में भी, अवलोकन में तो देखें ही देखें, लेकिन विचार अपने दोष के आवे तो भी उसका पक्ष नहीं होवे, बचाव नहीं होवे। जब मेरे दोष को मुझे अपक्षपात रूप से देखना है तो मैं इसका दोष को या इसका दोष को पक्षपात मैं कैसे करूंगा, दूसरों का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो क्या होता है कि जिसके प्रति राग होता है, जिसका पक्ष होता है, उनका दोष की कोई बात सामने आ जाती है तो ठीक उसका पक्ष कर देता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो तो बात की मामूली है, या उसको कुछ नहीं है ऐसा करके, या उसने ऐसा नहीं किया होगा, या वो तो ऐसा दोष नहीं गिनना चाहिए, उसको मुख्य नहीं करना चाहिए, ऐसे
एक क्वेश्चन को बहुत क्वेश्चन बना देता है उसको।
और क्या करता है कि नहीं, सामने वाला का दोष ज्यादा है, दोष में कोई पसंद होता है तो सामने वाला का जो दोष ज्यादा है इनका कम है, तो ये मूल दृष्टि वालों का ऐसा कार्य नहीं होता है। जो संगीत दर्शन है वो स्वभाव की दृष्टि है, और स्वभाव है ये गुण निधान है, तो स्वभाव के दृष्टि को हो या गुण की दृष्टि को हो, मुमुक्ष इस लाइन में नहीं जाना है कि जिसमें दोष का पक्ष, गुण का पक्ष करो, दोष का पक्ष नहीं करो, चाहे किसी का हो। जिसके प्रति अनुराग हो इसका भी दोष का पक्ष नहीं करो, और जिसके प्रति अनुराग नहीं हो फिर इसका गुण हो तो उसका पक्ष करो। जैसे हमारे से कोई विरोध चलते हैं, लेकिन इसका गुण हो तो इसका पक्ष करो, उसकी सही बात हो तो उसका पक्ष करो, पर हमारा वाला कहा जाता हो लेकिन उसका अवगुण हो, उसका दोष हो तो उसका पक्ष नहीं। फिर बाद में हमारा दोष देखने में निष्पक्षपातता आएगी, क्योंकि ये तो स्थूल विषय है, ये सूक्ष्म है। दूसरे का दोष देखना ये स्थूल है, अपना दोष देखना ये सूक्ष्म है। प्राय तो अपना दोष किसी को दिखता ही नहीं, दूसरे का तो बात बात में दिख जाता है,
तो पहले स्थूल वाला दोष दिखेगा,
स्थूल दिखेगा तो स्थूल में ये दिखा जाना चाहिए कि हमें गुण का पक्ष करना है, हमें दोष का पक्ष
का दोष देखने की तो आदत पड़ी हुई है।
हाँ, तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस है तो ये कला तो आती है हमें, लेकिन ये दुर्दशा होने की बात है, दिशा में दशा बिगड़ेगी, इसमें ज्यादा विस्तार से नहीं।
એનવાણી
है कि जीव को सच्ची मुमुक्षुता ही प्रकट नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा दुख रहा है। मुमुक्षुता के विषय में ऐसी बात चली, मोक्ष की कामना पूर्ण शुद्धि का अपना ध्येय, परिपूर्ण निर्दोष होने की भावना, इसको मुमुक्षुता कहते हैं। ये व्युत्पत्ति अर्थ भी ऐसा होता है कि जो मुक्त होना चाहता है उसे ही मुमुक्षुता कहते हैं। मुक्त होना कहो या संपूर्ण निर्दोष होना कहो, एक ही बात है। यह भी बात चली कि मोक्ष मार्ग में तो अनुभव परिणाम होते हैं, लेकिन इसके पहले वाले संसार दशा में सभी परिणाम कर्म के उदय के संग वाले परिणाम होते हैं, यानी उदय जनित परिणाम होते हैं, उदय के निमित्त से होने वाले परिणाम होते हैं। लेकिन मोक्ष की भावना, मोक्ष की कामना, संपूर्ण निर्दोष होने की भावना, ये भावना के साथ किसी कर्म का उदय का मेल नहीं करता। ये एक मुमुक्ष की भूमिका में असामान्य घटना है, विशेष प्रकार की एक घटना है कि जिस मुमुक्ष को संपूर्ण शुद्ध होने की अंतर से भावना हुई है। ऐसे कर्णानियोग का विषय होने से जितना रागांश है उतना चारित्र मोह का अवश्य संबंध है, और जहां तक प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शन नहीं है वहां तक दर्शन का संबंध भी परिणाम के साथ अवश्य है, लेकिन वो गिने नहीं जाते। जैसे ज्ञानी पुरुष के भी ऐसे परिणाम चारित्र मौके होते हैं, फिर भी वो गिने नहीं जाते, उसकी गिनती नहीं करते। हम ऐसे कहेंगे तो ज्ञानी तो अबंध ही है, क्या कहेंगे? ज्ञानी को अबंध ही है, लेकिन संसार में है, गृहस्थी में है, व्यापार में है, तो कैसे अबंध है? वो जो कर्म के साथ जो परिणाम है संबंध रखने वाले, वो गिनती के लायक नहीं रहे, इसलिए हम उसको नहीं गिनते हैं। और जो गिनती के लायक न हो उसको नहीं गिनना, वो न्याय संपन्न है। गिनती के लायक न हो फिर भी इसकी गिनती करना, ये न्याय विरुद्ध है, न्याय संपन्न नहीं है। इस तरह इस भावना की प्रधानता देखते हुए, इस भावना में जो भाव रहा है, इस भावना में जो मोक्ष मार्ग का बीज रहा है, इसकी प्रधानता करते हुए ये कह सकते हैं कि इस परिणाम के साथ कर्म का उदय का पुण्य नहीं जाता है। विचार चला था चारित्र को आया था, लेकिन कल वो बात स्पष्टीकरण में हेतु पूर्वक नहीं दिया था, इसके इसकी प्रधानता, इसकी मुख्यता और इसकी विशेषता समझनी चाहिए। दूसरी अपेक्षा साथ में लेने से कभी कभी इसकी विशेषता ध्यान पर नहीं आती या विशेषता छूट जाती है, लक्ष्य में नहीं आती। इसलिए दूसरी अपेक्षा करके इस बात को डिली नहीं करनी चाहिए, इसलिए बात को कल नहीं खोले थे। क्या बताया था ये खास बात है। एक और भी लक्षण लिया कि अपने परिणाम में मोहासक्ति के परिणाम में अकुला कर मैंने मजबूर होती है, अकुलता होती है, और ऐसे होने से इसमें से छुपने ऐसा छुपने का प्रयत्न होना, प्रयास होना, इसमें दो प्रकार होते हैं। कुछ मुमुक्ष होने पर ऐसे परिणाम होते हैं कि उसको अकुलता अवश्य होती है लेकिन प्रयास नहीं होता है। तो अकेले खेत कर नहीं रह जाना, धीरज से अपने हित के विषय में, अपने मुक्त होने के मार्ग में इस दिशा में प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि ये भूमिका अवश्य आएगी मुमुक्षुता में, जिसको अज्ञान परिश्रम कहते हैं, जिसको दर्शन परिश्रम कहते हैं। कृष्णदास जी के जो पत्र हैं इसमें ये बातें आई हैं, तुम अज्ञान परिश्रम को वेदते हो, दर्शन परिश्रम को वेदते हो, लेकिन धीरज से शांति से काम लेना है। तो यहाँ तो दोनों बात साथ लेनी है कि मुमुक्षुता यह है कि सर्व प्रकार की मोहासक्ति से अकुल आकर एक मोक्ष के विषय में ही यत्न करना, ये मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता में ऐसा होता है, और भी मुमुक्षुता में क्या क्या होता है ये बात को नीचे चलेगी, लेकिन ये बात प्रारंभ में ले ली है, क्योंकि यहाँ मुमुक्षुता और तीव्र मुमुक्षुता के विषय में चर्चा का प्रारंभ होता है, विषय का प्रारंभ होता है। तो पहली बात ये ली कि सभी प्रकार के महाशक्ति के परिणाम में, जैसे कोई अपने नाक बंद कर देते हैं वैसे अंदर मंझवण 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 हो जाती है, ऐसे परिणाम कर्तृत्व रूप से नहीं होते हैं, सहज होने लगते हैं। ये योग्यतावश ऐसा होता है, ऐसी योग्यता सहज रूप से जब होती है तब मोक्ष के बारे में, मोक्ष के दिशा में भी प्रयत्न करने का एक प्रयास भी साथ ही साथ चलता है, क्योंकि मुंझवण वाली अकुलता वाली परिस्थिति बर्दाश्त हो नहीं पाती और सुन नहीं हो पाती। तो इससे छूटने के लिए जो प्रयास है ये महाशक्ति के छूटने के लिए है, इसलिए मोक्ष के लिए प्रयास होता है, मुक्त होने के लिए यत्न होता है, ऐसा प्रयत्न करना, ऐसा पुरुषार्थ होना, ये मुमुक्षुता का, उसे ही मुमुक्षुता कहते हैं, यही मुमुक्षुता का स्वरूप है। अब कहते हैं कि उसके ऐसी मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण यह है, यहां तक चले आए तक, कि मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण है यह है कि अपने दोष देखने में अपक्षपातता हो गई। यहां से ये उत्पन्न होने की प्रक्रिया પ્રોસેસ ચાલુ હોતા મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન કહાં સે હોતી હૈ ચર્ચા મેં થોડી વાત ચલી થઈ કે દૂસરે કા દોસ્ત તો બહુ જલ્દી સે નજર આતા હૈ ક્યોંકિ જીવકો પ્રેક્ટિસ હો ગઈ હૈ કે દૂસરે કા દોસ્ત તો દિખતા હૈ લેકિન સ્વયં કા દોષ દેખને નહીં મિલતા અપના દોષ દેખને મેં અપની દ્રષ્ટિ ઇતની પહેલી હો જાની ચાહીએ સૂક્ષ્મ હો જાની ચાહીએ કે અપના સૂક્ષ્મ દોષ ભી અપને અનજાને મેં નહીં ચલે જાય અપને જાનને મેં આ જાય બીસ દોરા મેં એ પંક્તિ આવી બીઠા નહીં મિત દોષ તો કરીએ કોણ ઉપાય वो मुमुक्षुओं ने अपना दोष का देखना ही नहीं होता है उसको तिरने की आशा कहो या मोक्ष की अभिलाषा कहो व्यर्थ है ये आशा छोड़ देनी चाहिए तो मुझे मुक्त होना है यहाँ से मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है क्या कहा गया उत्पन्न होने का लक्षण ऐसा कहा मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण कितनी दरकार होगी अपने परिणाम के अवलोकन में कितनी दरकार होगी और मुक्त होने की कितनी भावना होगी जिसको इस प्रकार से प्रारंभ नहीं होता है उसको मोक्ष की अभिलाषा हुई ही नहीं है चला था कि यहाँ आते हैं तो मोक्ष होने के लिए तो आते हैं वरना तो हम क्लब में क्यों नहीं जाए रोटरी क्लब चलती है दूसरी दूसरी तरफ से चलती है तो इतना नाम क्या नहीं पता है लेकिन चलती है जो प्रसिद्ध है वो चलती है यहाँ क्यों आते हैं उनको मुक्त होना है इसलिए आते हैं अच्छा भैया तुम्हें मुक्त होना है इसलिए तुम इधर आए हो तो ऐसा प्रारंभ हुआ है मैंने अपना दोष देखने का अवलोकन चालू हुआ है क्या उस प्रकार का अवलोकन चालू हुआ है क्या अपना दोष देखने में अगर ये अवलोकन चालू नहीं हुआ तो न तो मुमुक्षुता उत्पन्न होने की कोई प्रक्रिया चालू हुई है और न तो कोई मोक्ष की अभिलाषा हुई है कि जिस अभिलाषा के कारण ये प्रक्रिया चालू होती है साधन साध्य के दृष्टिकोण से हम विचार करें या कारण कार्य के सिद्धांत से विचार करें तो मोक्ष की अभिलाषा पूर्ण शुद्धि की अभिलाषा कारण है और अवलोकन होना ही इसका कार्य है तो पहला कारण उत्पन्न ही नहीं हो और कार्य चालू हो ये असंभव है ऐसा कभी नहीं बन सकता अवलोकन जरूरी है और अवलोकन होने के लिए दोष के अवलोकन होने के लिए मुक्ति का पूर्ण शुद्धि का संपूर्ण निर्दोषता का संपूर्ण पवित्रता का ध्येय होना आवश्यक है उपांगदेव ने इस पत्र में पद्धति जिसको कहते हैं सिस्टम जिसको कहते हैं व्यवस्थित मुमुक्षुता का प्रारंभ कैसे हो मुमुक्षुता में जीव आगे कैसे बढ़े और पदार्थ निर्णय तक कैसे पहुंचे ये जो पदार्थ निर्णय सम्यक दर्शन का अनन्य कारण है निश्चय साधन है ऐसी व्यवस्थित बात कही है इसलिए तो इस ग्रंथ में ये ऐसा शब्द प्रयोग पेश आता है कि हमने बहुत से शास्त्र का हमने इसमें अति बुद्ध क्या शब्द लिखा है हमने इसमें अति बुद्ध शास्त्रार्थ का भी प्रतिपादन किया है सिर्फ शास्त्र का अर्चन नहीं किया है, अति गुड शास्त्र का प्रतिपादन कर दिया है, इतना शब्द लिखा है। सारा पत्र के पूर्ण करने में जो विषय पत्र में लिखा उस विषय पर कितना वजन रखा, इसके महत्व का कितनी दर्शाई, और उपलब्ध जो भी शास्त्र है जो हम देखते हैं, तो मुमुक्षुता के विषय में तो शास्त्र में से इतना मिलना भी मुश्किल है जितना इस एक पत्र में से मिलता है, उतना कोई ग्रंथ में से अगर मिलता हो तो निकाल दो, जो भी उपलब्ध है उसमें। हालांकि बारह अंग में सब आ चुका है, लेकिन अभी तो विच्छेद गए हैं बहुत से, उपलब्ध जो जिनागम है उसमें से ऐसा विषय पद्धति साथ में ही सुव्यवस्थित पद्धति क्रम से जो बात आई है, ये तो एक क्रम विप्रयास का भी एक भूल नहीं हो गए, ये भी इसमें बात आ गई है। वरना तो क्या होता है कि धर्म के क्षेत्र में सभी कार्य अच्छे ही होते हैं, कोई बुरे कार्य तो इधर होते ही नहीं है। तो किसी को कोई कार्य पसंद होता है, किसी को किस कार्य में रुचि जमती है, किसी को किस कार्य में रुचि जमती है, वो अपने अपने मनमानी कर लेते हैं, पर करते हैं, कोई बुरा कार्य तो करते नहीं है, इसलिए कोई इसका विरोध भी नहीं करे। लेकिन महापुरुषों ने अनंत करुणा करके कर्म को भी रखा है, और क्रम के दृष्टिकोण से अगर इस एक वचनामृत का हम विचार करें, कौन सा, कि मुमुक्षुता उत्पन्न होने का क्या लक्षण, कि मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण क्या, कि अपने दोष दोष देखने में अपक्षपातता, सिर्फ देखना नहीं अपक्षपात रूप से देखना। आगे पूरी शोभा भाई की पत्र का एक भूत रूप में बात आगे है इस ग्रंथ में, ऐसे तो मुमुक्षुओं के कोई पत्र नहीं आए, लेकिन ये महत्वपूर्ण पत्र होने से संकलनकारों ने भूत रूप में उत्तर दिया है। तो पाल देव ने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दिया, उत्तर बहुत सुंदर होने से
क्रम किन सके पत्रांक 333
पत्रांक
333 नीचे
333 के पत्र के उत्तर दिए हम दिया
है उसके फुटनोट में,
फुटनोट में वहीं पत्र के नीचे ही दिया है। श्री सौभाग्य भाई का द्वारा लिया गया उत्तर फुटनोट में है। क्या लिखा है पहली बात, निष्पक्ष होकर सत्संग करें। निष्पक्ष मैंने दूसरे पक्षापक्ष का तो वहां चर्चा ही नहीं है, कोई किसी दूसरे व्यक्ति का, एक व्यक्ति का पक्ष करे कोई दूसरे व्यक्ति का पक्ष करे, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। निष्पक्ष मैंने अपने दोष का पक्ष नहीं करे उसको निष्पक्ष कहते हैं, दूसरा लोगों का पक्ष करे, अपने अनुराग वाले का पक्ष करे, उसका तो कोई क्लास ही नहीं है, इनकी तो चर्चा व्यर्थ है, करने का इधर समय भी नहीं है ऐसे लोगों को। लेकिन पहले शब्द ये लिखा है सुहाग भाई ने कि निष्पक्ष होकर सत्संग करें, अपने दोष में पक्ष नहीं करें, ऐसे सत्संग में आवे, इस प्रकार से सत्संग में आवे। बात तो ये चलिए कि सत्पुरुष की पहचान नहीं होती है, इसका क्या कारण, सत्पुरुष अनंत काल में अनंत वेद मिले नहीं मिले ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा मिलना सत्पुरुष का हुआ है, इससे कम मिलना हुआ है निर्ग्रंथ भावलिंगी संत जंगल वनवासी संतों का, और इससे कम संयोग हुआ है सर्वज्ञ वितराग केवली के, ये तम तीन जीवंत जीव शासन है, ये तीन जो है जो सद्भावयोग के धारण करने वाले हैं,
શુભ ઉપયોગ કરો. આચાર્ય ભગવાન સમય સાર મેં જીન શાસન કહેતે હૈ, સમસ્ત જીન શાસન કહેતે હૈ, અંતર બાહ્ય જડ ચૈતન્ય જીતના ભી જીન શાસન મેં ગિનતી મેં આતા હો, ઉચ્ચાર અનુચ્ચાર યે સમસ્ત જીન શાસન શુદ્ધોપયોગ મેં સમાવિષ્ટ હૈ, શુદ્ધોપયોગ મેં ગર્ભિત હૈ. તીન પ્રકાર કે વ્યક્તિ હોતે હૈ, એક તીર્થંકર પરમ દેવ, એક ભાવલિંગી વનવાસી સંત મુનિરાજ, ઓર એક ભલે ની ગૃહસ્થી મેં હો સત્પુરુષ. યે તીન સમસ્ત જીન શાસન, તીન તીન મેં એક ભી વ્યક્તિ હો તો યે સમસ્ત જીન શાસન હૈ. અભી તો જ્યાદા મિલના હી મુશ્કેલ હૈ, લેકિન એક વ્યક્તિ મિલ જાય તો યે પૂરા જીન શાસન હમારા હૈ. તો ઇસકી પહેચાન નહીં હુઈ. બાત તો યે લેના થા કે તીર્થંકર જો ઇસકી પહેચાન નહીં કર સકે, ક્યોંકિ સર્વજ્ઞ કા સ્વરૂપ જ્ઞાન મેં આના, કેવલ જ્ઞાન કા સ્વરૂપ જ્ઞાન મેં આના, યે બહોત કઠિન બાત હૈ. ઓર ઇસકા મિલના ભી બહોત કમ હોતા હૈ. તીર્થંકર તો સારે એક કરોડા કરોડી સાગર મેં સોઈસ તો હુએ, ઇસસે જ્યાદા તો હુએ નહીં. ઓર ઇસકે માધ્યમ સે સંત કિતને હુએ, કરોડો હુએ, કરોડો મુનિરાજ હૈ. કેવલી ભી લાખો હુએ, લેકિન સભી કા યોગ નહીં હોતા હૈ, બોધ કા ઉપદેશ કા. નીચે ચતુર્થગુણ સ્થાન પંચમ ગુણ સ્થાન સત્પુરુષ જ્યાદા ઉપર ઉપર સાધક કી સંખ્યા હંમેશા કમ હોતી જતી હૈ. લોહે સે સોના કમ, સોને સે હીરા કમ, એસે એક વિશ્વ કા નિયમ હૈ. કિંમતી ચીજ બહુત કમ માત્રા મેં પાઈ જતી હૈ. तो सत्पुरुष सबसे ज्यादा मिले हैं हमको, हमको भी मिले हैं. अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हैं हम, लेकिन पहचान एक दफे भी नहीं हुई है. इसलिए सत्पुरुष मिलने से भी सत्पुरुष की पहचान होना बहुत महत्वपूर्ण विषय है. इस विषय पर बहुत लिखते हैं कृपाल देव को, लेकिन लिखते हैं इतना नहीं, प्रश्न भी पूछते हैं कि तुम क्या समझते हो. सुभाग भाई तो बहुत नजदीक के सुपात्र जी थे, उनको पूछा कि सत्पुरुष की पहचान नहीं होती है और उसके प्रति व्यावहारिक कल्पना अपने समान ही रहा करती है, जीव की यह कल्पना किस उपाय से दूर हो, ऐसा एक प्रश्न रख दिया है सामने. इसका मतलब है कि पहचान हो तो कल्पना नहीं होगी, और पहचान नहीं होगी तो कल्पना होगी ही होगी. इसका उत्तर दिया है, इसमें पहला शब्द का प्रयोग ये निष्पक्ष बात का है जो अपने पत्र में चर्चा करें. ऐसे निष्पक्षपातता मोक्ष अभिलाष पूर्वक निज अवलोकन के बिना कभी उत्पन्न नहीं होता. ये परिस्थिति में भी आई नहीं सकता, समझ सकता है. सूक्ष्म ज्ञान ज्ञान में उतना बुद्धि में बात आ सकती है कि मुमुक्षु को या मुझे, मैं भी मुमुक्षु हो तो मुझे मुमुक्षु की लालसा होनी चाहिए, मुझे मेरा दोष का अवलोकन होना चाहिए. ये होना चाहिए एक बात है, और सहज होता रहे वो दूसरी बात है. यहाँ ये बात है कि मुमुक्षुता का उत्पन्न होने का लक्षण यह है, ये मिलान करने की चीज है. लक्षण से तो शैली किया, इसका मतलब ये कि तुम मिलान करो कि तुम्हें ये अवलोकन तुम्हारा दोष का चालू हुआ कि नहीं हुआ, वर्तता है कि नहीं वर्तता है. अगर नहीं बचता है तो मुमुक्षुता उत्पन्न ही नहीं हुई है. एक तो मुमुक्षु जीव को बोध लेने की बहुत आवश्यकता है. परिस्थिति ये खड़ी हो जाती है
हम तो मुमुक्ष ही नहीं बने उसके पहले दूसरे को बोल देना चालू कर। ये बात कितने नुकसानकारक होगी उसका थोड़ा हिसाब किताब लगा लेना
चाहिए।
गंभीर विषय है ये तो। मोक्ष की अभिलाषा मोक्ष के लिए है तो ये मोक्ष प्राप्त करने का व्यापार भी बहुत कीमती चीज का व्यापार है। ये जरियात से भी अधिक मूल्यवान चीज के दुकान हमने अगर लगाई है तो व्यापार करने में मुनाफा नहीं करेंगे तो नुकसान अवश्य अवश्य हो जाएगा। अगर मुनाफा नहीं किया तो नुकसान होने अनिवार्य है क्योंकि व्यापार में तो दो ही बात बनेगी, या तो मुनाफा होगा या तो नुकसान, लाभ नहीं होगा नुकसान होगा ही होगा। भाग्य योग से आए तो यहाँ तक आ गए, ये तो एक सद्भाग्य की निशानी है कि एक बहुत सुंदर महत्वपूर्ण अलौकिक विषय हमारे सामने आए हैं। ऐसे अलौकिक पुरुषों के वचन भी हमारे सामने आए हैं। अब हम नुकसान करें तो हमारे जैसे कमनसीब भी कौन है, लाभ नहीं करे और नुकसान कर ले तो हमारे जैसे कमनसीब भी कौन समझे, दूसरे का कोई इतने कमनसीब तो नहीं होते, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अपने दोष देखने में अपक्षपातता है और इस कारण स्वच्छंद का नाश होता है। फल स्वरूप ये होता है कि स्वच्छंद समाप्त हो जाएगा, स्वच्छंद नहीं जाएगा, सब स्वच्छंद मिल जाएगा। ये एक महादोष है और ऐसा ये छुपा रुस्तम है। हिंदी भाषा का इडियम है, इडियोमेटिक लैंग्वेज है, तो अपने आप को पता नहीं चलता है इसका, स्वच्छंद का पता अपने आप को नहीं चलता है। बहुत एक ऐसी चीज है कि वो आदमी को स्वयं को अंध बना देता है, स्वच्छंद रूपी अंधत्व व्याप्त हो जाता है, तो इतनी मुश्किल हो जाती है कि फिर आगे बढ़ना तो वो समाप्त हो गया, पीछे कितना जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं कर सकते।
व्यवस्थित क्रम में स्वच्छंद जिसको टालना है उसको अवलोकन में पहले आना ही होगा, ये क्रम हो गया फिर
आना ही चाहिए। और जिसको अवलोकन में आना है वो सहज रूप से आना है मुक्ति की भावना के साथ, मुक्ति के निदान के साथ। मुक्ति इतना निदान आत्मसिद्धि वैराग्य आदि सफल जो जो सह आत्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान न प्राप्ति तना निदान, निदान शब्द का प्रयोग किया है। निदान करने के बाद आत्मज्ञान का निदान, मुक्ति का निदान। तो आत्मज्ञान तो है नहीं तो हमारा वैराग्य तो सफल नहीं होगा आत्मज्ञान बिना, ऐसा करके छोड़ देंगे वैराग्य तो हमारा, करो नहीं करो शुभ भाव करो नहीं करो एक ही सी बात है स्वच्छंद में चला जाए, ऐसी बात नहीं। या तो आत्मज्ञान समेत वैराग्य हो या तो इसका निदान पूर्वक वैराग्य हो, लेकिन वैराग्य तो होना ही मुश्किल है, बिना वैराग्य तो बात चली ही नहीं। सत्संग में वैराग्य समेत करना ऐसे आज्ञा है, कृपालु देव की आज्ञा है कि सत्संग भी सरलता और वैराग्य के साथ ही करना है। दो बात लिया है, एक वैराग्य और एक सरलता, दो बात लिया है।
बिना तो
उसमें तो दरकार ही नहीं है। लौकिक में ये बात तो बहुत सहज समझ में आती है कि जिस आदमी ने अपने कारोबार में धंधा में अगर 2 अरब का कोई प्लान लगा लिया है 200 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो गए तो उसको कितना व्यस्त रहना पड़ता है कि सुबह 5 बजे से टेलीफोन चालू जो हो जाते हैं, रात को 11-12 तक घंटी बंद नहीं रहती। आज तो हमारी कॉन्फ्रेंस चलेगी टेक्नीशियन लोगों के साथ, कल हमारी सिटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी अर्थशास्त्रियों के साथ, जो इकोनॉमिक एडवाइस करते हैं वो टेक्निकल एडवाइस करते हैं, और फिर बाद में प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बैठेंगे। यानी हमेशा हमेशा एक कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, दूसरी कॉन्फ्रेंस चली, तीसरी चली, चौथी चली, तो चालू ही रहता है, क्योंकि एक दिन में वो लेट करना नहीं चाहता है, क्योंकि एक दिन का मुनाफा भी करूँ लाखों में है इसका आगे जा करके। तो इकोनॉमिक एडवाइस में तो ये बात है कि एक दिन तुम लेट हो गया तुम्हारा इतना लाख गया, एक महीना लूट गया तो इतना करोड़ गया तुम्हारा, पैसा लेट करेगा। शादी में बड़े भाई को भेजता है और शमशान में भेजना हो तो छोटे भाई को भेज देता है, वहां तो उसको व्यवहार भी, यहाँ तो व्यवहार आ जाता है बीच में, यहाँ तो व्यवहार भी नहीं आता है, व्यवहार में दूसरे को भेजते हैं। क्यों? बहुत बड़ा लाभ नुकसान का सवाल है। इससे ज्यादा मूल्यांकन हमारी भावना का और हमारे मार्ग का और हमारे कार्य का हमें नहीं आएगा, वहां तक ये काम संपन्न होना संभव नहीं है। कितना समझ लेना चाहिए, ये स्वाध्याय है, इसमें आत्मज्ञान नहीं हो जाता। स्वाध्याय ऐसे करते करते आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, लेकिन स्वाध्याय करते करते क्या होगा कि इसका मूल्य है ये समझ में आएगा। मूल्यांकन अगर सही हो गया तो आत्मज्ञान सहज है, अगर मूल्यांकन नहीं हुआ तो कोई कारण आत्मज्ञान का होने वाला नहीं। इतना मूल्यांकन आना चाहिए। जगत इष्ट नहीं आत्म से, जगत इष्ट नहीं आत्म थी, उसको तो मध्य पात्र में रखा है कृपाल देव ने, कृष्ण पात्र के बाद तो कोई और है, तो मध्य पात्र में आया है, जगन्य पात्र से थोड़ा आगे बढ़ा है। तो ये स्वच्छंद नाम का जो दोष है सबसे बड़ा दोष है और बहुत छिपा हुआ रहता है हमेशा, इसका नाश हो जाएगा।
सत्संग की विदा का प्रयोग करने वाली स्थिति, सत्संग 24 कलाक रहने પછી સ્વતંત્ર પોતાનું મનન ને ચલાવવું પડે, તો સ્વતંત્ર શક્તિ નો આવે છે, સ્વતંત્ર વિચાર થાય એટલે સત્સંગ માં થાય છે, શું
કરવું? જોખમ તો હૈ, ઇસ લાઈન મેં જિમ્મેદારી બહુત હોને સે જોખમ ઉતના હી હૈ। ये हीरा का व्यापार करते हैं तो दुकान बंद करके कैश ले, तिजोरी बंद करके कैश घर पे ले जाता है तो जोखम है कि नहीं? जो बड़ा व्यापार करते हैं उसको बड़ी कैश घर पे ले जानी होती है। अभी बैंकें हो गई ना तो फिर भी 2 नंबर में तो कैसे ले जाना पड़ता है। जिम्मेदारी है, जोखमदारी तो है ही हर जगह, जहाँ बड़ा व्यापार है, बड़ा कारोबार है, वहाँ जोखम है, जिम्मेदारी है, ये तो समझना ही। इसलिए सावधानी से चलना है, इसलिए कहा कि जब दूसरों के साथ सत्संग का पीरियड पूरा हो गया या नहीं रहा समझो, और स्वयं चिंतन मंथन में रहता है, तो अपना दोष का अवलोकन करने की जो जिसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म है उसको कोई आपत्ति नहीं। स्वच्छंद किसको होता है? ठीक है, प्रश्न चला तो अपन विचार करें इस पर कि स्वच्छंद किसको होता है, कि जो अपना देश दोष को देखा नहीं देखा कर लेता है, जैसे सुनी अनसुनी कोई कर लेते कि नहीं, कि आपने बात सुना है लेकिन हमने अनसुनी कर ली,
देखा ही नहीं
दिखता है,
वृत्ति
वृत्ति देखने का हमारा इरादा नहीं है, देखने की हमारी वृत्ति नहीं है, देखने का हमारी सावधानी नहीं है, दरकार नहीं है हमारे। जो कार्य में हम दरकार करते हैं उसमें तो पाई पाई के हम दरकार कर लेते हैं, करते कि नहीं करते। एक चना मुरमुर कुरमुरा बेचने वाला भी जो पैकेट बांधते उस पर दोरा लगाता है उसका भी हिसाब करता है कि एक महीने में 5 रुपये का तो दोरा हमको लग जाता है, ये किसके पर लगता है, ग्राहक पर ही तो लगता है, हमारे पर थोड़ा लगेगा, कितना कितना गिनती करता है, पैकेट बांधता है, दोरा लगाता है, इसका भी हिसाब करता है कि नहीं करता है। धंधा तो मामूली है चना बेचने का, मूंगफली बेचने का, तो उतना वो हिसाब लगाता है, पाई पाई का हिसाब लगाता है। हम दरकार नहीं करें कि हमारा दोस्त हमको दिखता नहीं है, क्या करें, ये बात फालतू है।
आला गुरु ने आओ तो तुम ने मैं तो एक नसो आ गए हर बार बोले थे वो भी नहीं
मिला ही कहां है मिला किसको कहवे, ग्रहण किया, अंगीकार किया हो तो मिला है।
कौन पे थी मतलब कौन ग्रहण
समूह तो अनुभव हुआ है, ये तो कहा सर्वज्ञों का हुआ है, तीर्थंकर के समूह शरण में हम गए, पूजा भक्ति किया, सब कुछ किया, सब बेकार हो गया।
मगज में तो चल गए इसके ग्रहण ग्रहण पे उभरा करो कमला एक दिन
धारणा बहुत हो गई, अंगीकार होना ग्रहण होना एक दूसरी बात है, धारणा होना एक दूसरी बात है, दो बात ही अलग अलग है। तो सत्संग में तो ये समझना है कि धारणा किसको कहें, अंगीकार होना किसको कहें, स्वच्छंद कैसे नहीं रहे, रहे तो कैसे रहे, इसके तो चर्चा करना है, इसका तो विचार विमर्श करना है। जो भी विषय सामने आएंगे उसका चारों पक्षों से उसकी परामर्शता तो होनी चाहिए। जब बिल्कुल नहीं रहते यही तो सत्संग का लाभ है सबसे बड़ा, और इसलिए तो सत्संग सत्संग सारे ग्रंथ में सत्संग की बात क्यों चली, तो अकेले को तो सूझ नहीं आती, अकेले चिंतन मनन मंथन करने में कहीं भूल रह जाते हो तो अपने को पता नहीं चलता, और पता चले तो भूल रहे नहीं, लेकिन वो पता नहीं चलता इसलिए भूल रह जाती है। इसलिए सत्संग का उपदेश दिया महापुरुषों ने कि तुम सत्संग निरंतर सत्संग में रहना, ऐसा कहा, क्या कहा, निरंतर सत्संग में रहना। सत्संग को कौन किसी काम वश किसी कार्यवश सत्संग को कौन मत करता है, ये तो प्रधान सूर है सारा ग्रंथ का, कृपाल देव के वचनामृत का कोई टोटल है मोक्षों के लिए, तो ये एक ही बात है।